हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 1-10। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्घिनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबर दरुणबिंबफल धरोष्ठान् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रान् कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जानि करारविंदे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जे हवे पिबस्वा मृतुमेत देव गोविंद दामो धर्माधवे पीढ़ं नटवरवपो कर्णियो कर्णिकार बिभ्रात्वा सह कनकपिशं वैजन्तीं शमाल्यं रन्ध्रार्वेणुं अधरसुधया पूर्णयोगोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तकीर्ति अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिङ्घास्य यापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिम् धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम महाप्राण की। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंध अध्याय चार, जिसका शीर्षक है विदुर का मैत्रेय के पास जाना। कल हमने पढ़ा कि जितने भी यदुवंशी हैं वो सब ब्राह्मण के श्राप मिलने के बाद, सारे यदुवंशी जो थे वो कुछ समय के बाद प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ पर उन्होंने तर्पण किया और अपने पितरों को पिंडों तक तर्पण करने के उपरांत ब्राह्मणों को बहुत सारा गौवें दान की, सोना चांदी रजत इत्यादि दान किए, कंबल इत्यादि, और उसके उपरांत पहले भगवान को भोजन अर्पित किया। और भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत ही स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उनको सादर नमस्कार किया और तथा गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए बलिभांति रहने लगे। इतना करने के उपरांत क्या हुआ, आगे की कथा मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणी तया विभ्रंशित ज्ञाना दुरुत्तय मर्मपस्पृशौ अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणी तया विभ्रंशित ज्ञाना दुरुत्तय मर्मपस्पृशु अथ ते तद अनुज्ञाता। उद्धव ने कहा अथ उसके उपरांत ते वे जो यादव गण थे, तद अनुज्ञाता, तद मना ब्राह्मणों द्वारा अनुज्ञाता अर्थात अनुमति दिए जाकर भुक्त्वा पीत्वा च वारुणिम, भुक्त्वा मना खाया, फिर उन्होंने वो वाला प्रसाद जो ब्राह्मणों ने खाया उनका उचिष्ट उन्होंने खाया, और उसके उपरांत पीत्वा पिया क्या, वारुणीम यानी मदिरा। मदिरा वारुणी होती है एक प्रकार की, जो कि चावल की बनी हुई होती है, वो उन्होंने पी। और तया विभ्रंशित ज्ञाना, तया उससे, विभ्रंशित ज्ञाना मतलब ज्ञान से विहीन होकर, दुरुत्तय यानी कर्कश शब्द से, मर्म पस्पृशु, मर्म मना हृदय के भीतर, पस्पृशु मना छू गया। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात उन सबों ने, विष्णु तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों की अनुमति से प्रसाद का उचिष्ट खाया और चावल की बनी मदिरा पीकर मदिरा भी पी। पीने से वे सभी ज्ञान शून्य हो गए और ज्ञान से रहित होकर एक दूसरे को वे मर्म भेदी कर्कश वचन कहने लगे। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते, उत्सवों में जब ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को बलिभांति भोजन कराया जाता है तो आतिथियों द्वारा अनुमति दिए जाने पर आतिथ्य भोजन का उचिष्ट खाता है। अतएव वैष्णव तथा भोजवंशियों ने ब्राह्मणों से औपचारिक अनुमति ली और तब वे तैयार किया हुआ भोजन पदार्थ खाया। ये उत्सव में ऐसा होता था, पहले भोजन ब्राह्मणों को खिलाते थे और जब वो उनको बोलते थे तभी वो खाते थे, तो इस तरह से उन्होंने भी खाया। क्षत्रियों को कतिपय अवसरों पर मदिरा पीने की छूट है, अतएव उन सबों ने चावल से बनी हल्की मदिरा का पान किया। ऐसे मदिरा पान से वे इतने ज्ञान शून्य तथा मूर्छित हो उठे कि वे पारस्परिक संबंधों को भूल गए और ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करने लगे जो आपस में एक दूसरे के हृदय को आहत करने वाले लगे थे। मदिरापान इतना हानिकारक है कि कोई अत्यंत सुसंस्कृत परिवार भी नशे में प्रभावित हो जाता है और नशे की आवश्यकता अवस्था में अपने आप को भूल जाता है। वृष्णि तथा भोजवंशियों से इस तरह अपने आप को भूल जाने की आशा नहीं की जाती थी, किंतु परमेश्वर की इच्छा से ऐसा हुआ और वे एक दूसरे के प्रति कटु बन गए। श्रीला प्रभुपाद की जय। हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि भगवान के भक्त जो कुछ भी करते हैं या उनके द्वारा जो कुछ भी हो रहा होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन वो भगवान की इच्छा भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा उपदेश होती है ताकि जो दूसरे लोग हैं, जो जनसाधारण हैं, वो इससे शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो मदिरा यानी नशा कोई भी हो, वो मदिरा के पीने से कभी भी किसी भी जीव को ना संतुष्टि मिली है और ना ही कभी मिलेगी। और ये दिखा रहे हैं कि चावल की बहुत हल्की सी मदिरा थी, उसको पीकर भी वो उनका ज्ञान शून्य हो गया। तो जहाँ पर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो वाइन पीते हैं या फिर उनका क्या हाल होता होगा, वो कैसे अपने शब्दों को रोक पाते होंगे। तो इस तरह से इसीलिए जब कोई कृष्ण भक्ति में इंटर होता है तो उसके लिए जो चार नियम हैं उसी में है एक नियम कि कभी नशा नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा, क्योंकि जो नशा होता है वो हमारी तपस्या का हनन कर देता है। और जब तपस्या ही नहीं रहती तो कभी भी जीव भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमें यहाँ से ये उद्देश्य मिलता है, ये उपदेश मिलता है कि हमें कभी भी किसी प्रकार का नशा नहीं। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि बोझवंशियों या यदुवंशियों को आप अपने आप को भूल जाने की आशा नहीं थी, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, भगवान के पार्षद थे। तो ये उनके साथ जो हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हुआ और वे एक दूसरे के प्रति कटु बन गए। आगे उद्धव जी बता रहे हैं, तेषां मैरे यदोषेण विषमी कृतचेतसां निम्लोचति रवावासी वेणूनामिव मर्दनम्। तेषां मैरे यदोषेण विषीमी कृतचेतसां निम्लोचति रवावासी वेणूनामिव मर्दनम्। तेषां मैरेय, तेषां मतलब उनके, मैरेय अर्थात नशे के, दोषेण दोष से, विषमी कृत असंतुलित चेतसां जिनके मन असंतुलित हो, निम्लोचति अर्थात असत हो, अस्त हो होता है, रवो सूर्य, आसीत यानी घटित होता है, वेणुनाम यानी भासों का, इव सदृश मर्दन यानी विनाश। अनुवाद, जिस तरह बांसों के आपसी संघर्षण से विनाश होता है, उसी तरह सूर्यास्त के समय नशे के दोषों के की अंतः क्रिया से उनके मन असंतुलित हो गए और उनका विनाश हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बोलते, जब जंगल में आग की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर की इच्छा से बांसों के आपसी संघर्ष से आग लग जाती है। इसी तरह यदुवंशियों का विनाश भगवान की इच्छा से आत्म विनाश की विधि से हो गया। जिस तरह मानव प्रयास से जंगल के बीच अग्नि लगने की संभावना नहीं रहती है, उसी तरह ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान द्वारा रक्षित यदुवंशियों का नाश कर सकती हो। भगवान ने उनके इस तरह से विनष्ट होने की इच्छा की, अतः उन्होंने उनके आदेश का पालन किया, जैसा कि तद अनुज्ञात शब्द से सूचित होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जब एक दूसरे को कटु वचन कहने शुरू किए, उसके उपरांत जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तो उनके मन इतने असंतुष्ट हो गए कि वो एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। पहले तो वो जो प्रभास क्षेत्र में जो घास उगी थी उससे, मतलब पहले वो एक दूसरे को गुस्से से बात कर रहे थे, उसके बाद अपने जो उनके पास छोटे छोटे हथियार थे, क्षत्रिय थे, तो उनसे जब उनके हथियार भी मतलब काम नहीं कर रहे थे, मतलब खत्म हो गए, गिर गए या टूट गए, उसके उपरांत उन्होंने वहां जो घास उगी हुई थी ना उसको एक दूसरे को मारना शुरू किया। और उन्होंने देखा ये घास तो हथियारों की तरह कार्य कर रही है, क्योंकि ये वही ब्राह्मण के शाप से उगी हुई घास थी। तो उससे उन्होंने एक दूसरे को का विनाश करना प्रारंभ किया। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जंगल में कभी भी जीव की इच्छा से आग नहीं लगती है, जब आग लगनी होती है तो भगवान स्वयं ही बांसों के संघर्षण से अग्नि उत्पन्न कर देते हैं। उसी तरह से यदुवंशियों के बीच में कोई भी इस तरह का मतलब कार्य हो ही नहीं सकता कि वो इतने एक दूसरे को कटु शब्द बोलें या एक दूसरे से युद्ध करें या कुछ। लेकिन ये जो भी हो रहा है वो सब भगवत इच्छा से हो रहा है, क्योंकि भगवान जो है वो उन्हें पुनः अपने धाम वापस ले जाने की योजना बना रहे हैं। आगे उद्धव जी कहते हैं, भगवान स्वात्म माया मायाया गतिम तामावलोक्य सरस्वती उपस्पृश्य वृक्ष मूल मूलम उपाविशत। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामावलोक्य सरस्वती उपस्पृश्य वृक्ष मूलम उपाविशत। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामावलोक्य सरस्वती उपस्पृश्य वृक्ष मूलम उपाविशत। भगवान स्वात्म मायाया, भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्व आत्म मायाया मतलब अपनी ही अंतरंगा शक्ति के द्वारा, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके द्वारा गतिम अंतम अंत ताम उनको अवलोक्य यानी देखकर, भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से देख लिया कि अब तो मेरा कार्य होने वाला है, इन सब का अंत होने वाला है। तो स वे यानी भगवान श्री कृष्ण सरस्वती उपस्पृश्य, सरस्वती नदी का उपस्पृश्य जल का आचमन किया। सबसे पहले सरस्वती नदी की ओर गए, वहां पर उपस्पृश्य अर्थात आचमन किया और वृक्ष मूलम उपाविशत, वृक्ष मूलम यानी वृक्ष की जड़ के पास उपाविशत यानी बैठ गए। अनुवाद, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति से अपने परिवार का भावी अंत देखकर सरस्वती नदी के तट पर गए, जल का आचमन किया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं यदुओं तथा भोजों के उपर्युक्त समस्त कार्य भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा संपन्न हुए। भगवान स्वात्म मायाया, जो कुछ भी हो रहा है भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा हो रहा है, क्योंकि वे अपने परिवार अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा कर लेने के बाद उन सबों को अपने धामों को भेज देना चाहते थे। वे सभी उनके पुत्र पौत्र थे और उन्हें भगवान के पैतृक स्नेह द्वारा पूर्ण रक्षण प्राप्त था। भगवान के समक्ष उनका विनाश किस तरह हो सकता, इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। प्रत्येक कार्य स्वयं भगवान द्वारा संपन्न किया गया, स्वात्म मायाया। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान की इच्छा थी तो भगवान ने अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा ही ये कार्य किया है। भगवान के पारिवारिक जन या तो उनके स्वांश अवतार थे या स्वर्ग लोक के देवता थे, अतः अपने प्रस्थान के पूर्व उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति से उन्हें पृथक कर दिया, उन्हें अपने अपने धाम में भेजे जाने के लिए पूर्व प्रभास नामक पवित्र स्थान पर भेजा गया जहां उन्होंने पुण्य कर्म किए और भोजन किया तथा जी भरकर मद्यपान किया। इसके बाद उन्हें अपने अपने धाम वापस भेजे जाने की व्यवस्था की गई, जिससे अन्य लोग यह देख सकें कि शक्तिशाली यदुवंश अब इस जगत में नहीं रहा। पिछले श्लोक में अनुज्ञात शब्द महत्वपूर्ण है, जो यह सूचित करता है कि संपूर्ण घटनाक्रम की व्यवस्था भगवान द्वारा की गई थी। भगवान की ये विशिष्ट लीलाएं उनकी बहिरंगा शक्ति अथवा भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं है, उनकी अंतरंगा शक्ति का ऐसा प्रदर्शन शाश्वत है। अतएव यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि यदु तथा भोजवंशी सामान्य भ्रातृघाती युद्ध में उन्मात्व अवस्था में मरे। श्री राजीव गोस्वामी ने इन घटनाओं की टीका जादूगरी की कला के रूप में की है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बार बार इसी बात को हमें स्मरण करा रहे हैं कि भगवान नित्य भगवान ही है, और वो जो भी अपने भक्तों के साथ, अपने वैष्णवों के साथ जो भी करवाते हैं वो उनके हित के लिए होता है। इसीलिए हमें जो कुछ प्राप्त होता है और या जो कुछ हम खो बैठते हैं, उस दोनों अवस्था में हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए, और हमें भगवान को ये बार बार बताना चाहिए कि आई नो यू हैव बेटर प्लान्स फॉर मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जो कुछ भी है आपकी ही कृपा है, और मुझे पता है आप आगे जाकर भी मेरा ही कल्याण करने के कार्य करोगे। तो भगवान जो कुछ भी अपने भक्तों के लिए करते हैं वही उसमें कल्याण, उसी में उसका कल्याण होता है। जब भगवान इस धराधाम तक आ रहे थे तब सारे भक्तों को ये आदेश दिया कि आप लोग भी चलिए वहाँ पर धराधाम में मेरे साथ लीला कीजिए, और अब भगवान को पुनः जाना है तो अपने सारे भक्तों को भी वापस लेके जा रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, अहम शोक्तो भगवता प्रपन्नार तिहरेणाय बदरीं त्वं प्रियाहीति स्वकुलं संजीहीर्षुणा। अहम शोक्तो भगवता प्रपन्नार तिहरेणाय बदरीं त्वं प्रियाहीति स्वकुलं संजीहीर्षुणा। अहम चोक्तो भगवता, अहम मनी में च उक्त कहा गया भगवता भगवान द्वारा, मुझे भगवान ने ये कहा। प्रपन्नार तिहरेण, प्रपन्न यानी शरणागत का, आरती हरेण अर्थात कष्टों का निवारण करने वाला द्वारा। कौन से भगवान? वो भगवान जो अपने शरणागत के समस्त आरती हरेण यानी दुखों को नाश करने वाला। ह निस्संदेह बदरीम त्वम प्रियाहि, बदरीम यानी बद्रीनाथ, बद्री में त्वम यानी तुम, प्रियाहि जाओ। इति स्वकुलम संजीहिर्ष्व, इति यानी इस प्रकार, स्वकुलम अपने ही परिवार को, संजीहिर्षुणा विनष्ट करना चाह। अनुवाद, भगवान उनके कष्टों का विनाश करते हैं जो उनके शरणागत हैं। अतएव जब उन्हें अपने परिवार का विनाश करने की इच्छा की तो उन्होंने पहले ही मुझे बद्री का आश्रम जाने के लिए मुझसे कह दिया था। श्री प्रभुपाद की जय। उद्धव जब द्वारिका में थे तो उन्हें उन कष्टों से बचाने के लिए सचेत किया गया था, जो भगवान के तिरोधान तथा यदुवंशी के विनाश के बाद आने वाले थे। उन्हें बद्री का आश्रम जाने की सलाह दी गई थी क्योंकि वहाँ वे नर नारायण के भक्तों का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे, और उनकी भक्ति की संगति में वे कीर्तन, श्रवण, ज्ञान तथा वैराग्य की अपनी उत्सुकता में वृद्धि कर सकते थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उद्धव जी अगर द्वारिका में ही रहते तो उनको बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता, उनको यदुवंशियों के विनाश को देखना पड़ता, और भगवान के तिरोधान के उपरांत जो वहाँ पर
जो कुछ होने वाला था उसके कष्टों को देखना पड़ता, परंतु भगवान ने पहले से ही उनको बद्री का आश्रम जाने के लिए आज्ञा दे दी। अहम चोक तो भगवता प्रपन्नार्थी हरेण बदरीम तम प्रयाहित। भगवान ने पहले बोला, देखो उद्धव, अब यहाँ पर जो है ना वो संकट का समय उत्पन्न होने वाला है, तुम ऐसा करो तुम बद्रीनाथ चले जाओ। तो भगवान की इच्छा के अनुसार उद्धव जी बद्री का आश्रम की ओर चले गए।
तथापि तदभि प्रेतम जानन्ना हमरिंदम पृष्ठतोन वगमं भर्तु पाद विश्लेषण क्षम। तथापि तदभि प्रेतम जानन्ना हमरिंदम पृष्ठतोन वगमं भर्तु पाद विश्लेषण क्षम। तथापि तदभि प्रेतम, तथापि यानी तिस पर भी, यानी कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी फिर भी, तद अभिप्रेतम उनकी इच्छा जानन जानते हुए अहम में अरिदम हे शत्रुओं के दमन करता विदुर। हे विदुर जी, मैं भगवान की इच्छा जानता था कि अब उनको विनाश करना है, इसलिए वो मुझे बद्री का आश्रम दे भेज रहे हैं, फिर भी पृष्ठत पीछे अनवगमम अनुसरण किया भर्तु स्वामी का, फिर भी मैं उनके साथ ही रहा। और पाद विश्लेषण यानी उनके चरण कमलों के चरण कमलों से बिलगाव अक्षम समर्थ ना होकर। भगवान ने मुझे कहा आप चले जाओ, परंतु फिर भी मैं भगवान के बगैर मैं अपने स्वामी के चरणों कमलों के विछुओं को सह पाना मेरे लिए बहुत कठिन था, इसलिए फिर भी मैं उनका ही अनुसरण करता रहा, उनके चरण कमलों के छाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। अनुवाद, हे विदुर, हे अरिदम अर्थात विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुस्मरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के विछोह को सह पाना मेरे लिए संभव ना था। तो विदुर जी कह रहे हैं, मैं कैसे जा सकता था उनको छोड़कर, क्या ये मेरे लिए संभव था कि मेरे प्रभु वो यहाँ पर कुछ लीला करना चाह रहे हैं और मैं उनको वहाँ पर छोड़ के चला जाऊँ, ये मेरे लिए संभव नहीं था, मैं उनका विच्छोह नहीं बर्दाश्त कर सकता था।
अद्राक्षमेकमासीनम विचिन्वन्दय तम पतिम श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतकेतम अकेतनम। अद्राक्षमेकमासीनम विचिन्वन्दय तम पतिम श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतकेतम अकेतन। उद्धव जी कहते अद्राक्षम एकम आसीनम, अद्राक्षम मतलब मैंने देखा, एकम यानी अकेले अकेले, आसीनम बैठे हुए, विचिन्वन अर्थात गंभीर चित्वन करते हुए, दैतम संरक्षक, पतिम अर्थात स्वामी को, अपने अपने स्वामी श्री कृष्ण को एक बार मैंने गंभीर चिंतन करते हुए एकांत में बैठे हुए देखा। श्रीनिकेतम सरस्वत्याम, श्रीनिकेतम यानी लक्ष्मी जी के आश्रय को, सरस्वत्याम सरस्वती के तट पर, कृतकेतनम यानी आश्रय लिए हुए, अकेतनम बिना आश्रय के स्थित। अनुवाद, इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा, यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग सन्यासी हो जाते हैं वे प्रायः किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। उद्धव ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा, जैसे आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि श्रीनिकेतम सरस्वत्याम कृतकेतम अकेतनम, जैसे जिनका कोई आश्रय नहीं होता है वो जब जैसे आश्रय लेते हैं, वो भगवान भी वहां पर आके ऐसे वृक्ष के साइड बैठ गए थे, परंतु वो तो श्री निकेतन है। श्री निकेतन का मतलब होता है लक्ष्मी जी को भी आश्रय देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताएं, उद्धव ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है, अतएव वे हर वस्तु के आश्रय हैं। अतएव संन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके ही आश्रय में है। तो वो कोई भी कार्य करेंगे तो वो आश्चर्यजनक होते हुए भी उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगे उद्धव जी के भगवान की अत्यंत मनमोहक और मधुर सुंदरता के विषय में बताते हुए उद्धव जी कहते हैं, श्यामावदातम विरजम प्रशांतारुणलोचनम दौर्भिचतुर्भिः वदितं पीतकौशाम्भरेण च श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोभिश्चतुर्भिः वदितं पीतकौशाम्भरेण च श्यामावदातं विरजं। श्यामावदातं अर्थात् श्यामवर्ण से सुंदर, विरजं अर्थात शुद्ध सत्वगुण से निर्मित, प्रशांत अर्थात शांत, अरुणलोचनम अरुण कहते हैं लाल, जो संध्या के टाइम पर जो सूर्य लाल हो जाता है ना, लाल लाल, लोचन अर्थात नेत्र, दुर्भि चतुर्भि वदितम, दुर्भि अर्थात भुजाओं द्वारा, चतुर्भि अर्थात चार, वदितम यानी पहचाने जाकर, पीत कौशंभरेण च, पीत यानी पीला, कौशम रेशमी, अंबरेण वस्त्र से थ तथा। अनुवाद, भगवान का शरीर श्यामल है, श्यामावदातुम श्याम वर्ण वाला है, किंतु वह सच्चिदानंदमय है और अतीव सुंदर है, वीरजम बहुत ही सुंदर है, उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं, प्रशांत अरुणलोचनम और वे प्रातःकालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल हैं। दुर्भि चतुर्भि वदितम में चार हाथों, विभिन्न प्रतीकों तथा पीले रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे भगवान हैं। पीत कोशम भरेण च, तो वो जब शांत स्थिति में एक सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हुए थे, तो उनकी सुंदरता छुपाए थोड़ी छुपती है, तो वो तो वृक्ष की आड़ में बैठे थे, परंतु उनकी सुंदरता, उनकी कोमलता, उनके नेत्रों की लालिमा, उनके पीतांबर से मैं उनको पहचान गया कि वो मेरे स्वामी ही हैं। वाम उरा वदिश्रित्य दक्षिणांग्री सरोरुहम अपाश्रिता भकाश्वत्थम अकृष्यम त्यक्तपिप्पलम वाम उरा वदिश्रित्य दक्षिणांग्री सरोरुहम अपाश्रिता भकाश्वत्थम अकृष्यम त्यक्तपिप्पलम वाम उरा वदिश्रित्य। वाम कहते हैं बाएं को, उरु अर्थात जांग, अधिश्रुत्य रख कर, दक्षिणांग्री सरोरुहम यानी दाहिने चरण कमल को, दाएं को बाएं के ऊपर रख कर, उपाश्रित टिका कर, अर्भक यानी छोटा अश्वत्थ यानी बरगद का वृक्ष, अकृषम प्रसन्न, त्यक्त पिप्पलम, त्यक्त मतलब छोड़े हुए, पिप्पलम मतलब घरेलू आराम। अनुवाद, भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाई झांग पर रखकर एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लिए हुए बैठे थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान की बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसीलिए कहलाता है क्योंकि यह तुरंत नहीं नष्ट होता, यह अनेकानेक वर्षों तक जीवित रहता है। इस पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अव्यय हैं, जिनकी संख्या 5 है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्तियों की प्रतिफल हैं, अतएव वे उनकी पीठ के पीछे रखी हुई हैं। चूंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसी बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। त्यक्त पिप्पलम सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त कर चुके हैं, किंतु भगवान नित्य तथा सदैव आनंद में ही रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। अब भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने तथा किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार थे। जिस तरह सूर्य किसी एक लोक में उदय होता है और उसी समय दूसरे लोक में अस्त होता है, किंतु इससे इसकी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं होती। शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर बरगद के पेड़ के विषय में बता रहे हैं कि ये ऐसा वृक्ष है जो कि बहुत समय तक जीवित रहता है। तो भगवान उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठे थे क्योंकि इस पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवयव हैं, असंख्य, उनकी संख्या 5 है। तो ये बरगद के पेड़ जो है उसके साथ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे अवयव हैं, और उस बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंग शक्तियां प्रतिफल होती। तो भगवान ने भगवद्गीता के 15वें अध्याय में बरगद के पेड़ का दृष्टांत दिया है। भगवान बताते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम छन्दस अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि तत्त प्रणाणि यस्तम वेद सवेदवेद। तो ये वास्तव में बरगद का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भगवान ये बताना चाहते हैं भले ही उसका मूल कितना ही दृढ़ है लेकिन फिर भी वो नष्ट होने वाला है, अर्थात इस भौतिक जगत में जो आया है उसे एक न एक दिन इस भौतिक जगत को छोड़ के जाना है। इसे भगवान यहाँ पर जो छोटा सा वृक्ष बताया गया है, क्योंकि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो बहुत छोटा सा है और बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर रहने के लिए मिला है। तो और पिप्पलम सूचित करता है कि अब वे इस छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं समाप्त करने वाले हैं। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं सूर्य का, कि जिस प्रकार सूर्य एक जगह उदय होता है वहाँ उसका प्रकाश होता है, उस समय दूसरे जगह पर नहीं होता, लेकिन उस समय जहाँ सूर्य उदय हुआ है उसके थोड़े देर के बाद वो दूसरी जगह पर चला जाता है और वहाँ पर हमें क्या लगता है कि सूर्य वो अस्त हो गया है। लेकिन सूर्य सदैव कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं तो सूर्य है और वहाँ पर अपना प्रकाश बिखेर रहा है। उसी प्रकार भगवान भी इस भौतिक जगत में आते हैं, सुंदर मनोहारिणी लीला करते हैं और उनके उपरांत वो किसी और जगत में, किसी और लोक में जाकर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो भगवान का कभी तिरोधान नहीं होता है, भगवान सूर्य की तरह हैं, उदय होते हैं, अस्त होते हैं, और केवल हमारी नेत्रों का ही ये दोष है कि हम भगवान को हर समय हर जगह नहीं दे सकते, वरना वो हर जगह हर समय उपस्थित रहते हैं। आगे उद्धव जी कहते हैं, और उस समय भगवान को मैं देख रहा था, निहार रहा था, अचानक से वहां पर वेदव्यास जी के सखा मैत्रेय ऋषि वहां पर आकर अपनी इच्छा से वहां उस स्थान पर प्रकट हो गए। उद्धव जी कहते हैं, तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा लोकान अनुचरन सिद्ध आससादाय दृच्छया। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखा लोकान अनुचरन सिद्धि आससादयदृच्छया। तस्मिन् महाभागवतो, तब महाभागवतो भगवान का महान भक्त, द्वैपायन यानी कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का सुहृत हितैषी सखा यानी मित्र, लोकान यानी तीन लोकों में अनुचरण विचरण करते हुए सिद्ध उस आश्रम में आससात पहुंचा यदृच्छया अपनी इच्छा से। अनुवाद, उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त तथा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास देव के मित्र एवं हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मैत्रेय व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर के शिष्यों में से थे। इस तरह व्यासदेव तथा मैत्रेय परस्पर मित्र तथा हितैषी थे। सौभाग्यवश मैत्रेय उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना नहीं है। मैत्रेय एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अतएव उस समय भगवान से उनकी भेंट किसी अज्ञात सुकृति अर्थात अज्ञात भक्ति के कारण हुई होगी। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्तिमयी सेवा में लगे रहते हैं, अतएव भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब भगवान से ऐसे लोग मिलते हैं जो उस उचित स्तर पर नहीं होते हैं, तो यह भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि यदि कोई भगवान से मिलता है या भगवान के भक्तों से मिलता है, तो ये बहुत बहुत पुण्य कर्म के उपरांत प्राप्त होता है। तो यहाँ जिस कृष्ण द्वैपायन के मित्र मैत्रेय ऋषि की बात हो रही है, वो शुद्ध भक्त नहीं थे। वो बहुत बड़े दार्शनिक तो थे, वो बहुत बड़े विद्वान तो थे, परंतु कोई अज्ञात सुकृति या किसी शुद्ध वैष्णव की आशीर्वाद के प्रताप से उनको भगवत सानिध्य प्राप्त हुआ, साक्षात भगवान के दर्शन हुए। आज भी भगवान अपने नाम के स्वरूप में हमारे साथ सदैव विद्यमान है, लेकिन देखते हैं हम कितने सारे लोग हैं जिनको हम कितना बोलते हैं कि आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, मगर इच्छा नहीं होती है भगवान का नाम लेने की। क्योंकि भगवान अभिन्नत्वान नाम नामिनो, भगवान में और भगवान के नाम में फर्क नहीं है। तो इसलिए भले ही भगवान अधिकार दे दिया नाम जप करने का, नियमतः सुमरने न काल, लेकिन फिर भी उनका नाम जपने के लिए कुछ तो सुकृति चाहिए, कुछ तो पुण्य चाहिए कि मुख पर वो नाम आ सके। तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम इतनी सरलता से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी सरलता से भगवान का मुख से नाम उच्चारण होता है, तो डेफिनेटली ये बहुत सारे जन्मों के पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है। आगे विदुर जी कहते हैं, तस्यानुरक्तस्य मनेर्मुकुंद प्रामोद भावानतन भावानत कंधरस्य आशर्वतो माम अनुरागहस समीक्षयावेश रमयन्नुवाच। तस्यानुरक्तस्य मनेर्मुकुंद प्रमोद भावानत कंदरस्य आशर्वतो माम अनुरागः स समीक्षयाविश रमयन्नुवाच तस्यानुरक्तस्य तस्य मनी उनका उनका जो किनका मैत्रेय ऋषि का अनुरक्तस्य अनुरक्त का मुने मुनि यानी मैत्रेय मुनि का मुकुंद मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान प्रमोद भाव अर्थात प्रसन्न मुद्रा में आनत अर्थात नीचे किए कंधरस्य यानी कंधों का आश्रवतो इस तरह सुनते हुए माम यानी मुझको आश्रवतो माम अनुरागहस अनुरागहस अर्थात दयालु हंसी से समीक्षयावेश रमयन्नुवाच समीक्षया मुझे विशेष रूप से देखकर विश्रमयन मुझे विश्राम पूरा करने देकर उवाच ऐसा कहा। उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी को कि मैत्रेय मुनि उनमें यानी भगवान में अत्यधिक अनुरक्त थे और वे अपना कंधा नीचे किए प्रसन्न मुद्रा में सुन रहे थे। मुझे विश्राम करने का समय देकर भगवान मुस्कुराते हुए तथा विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही महात्मा थे किंतु भगवान का ध्यान उद्धव पर अधिक था क्योंकि वे निष्कलंक शुद्ध भक्त थे। ज्ञान भक्त अर्थात वह जिसकी भक्ति एकत्ववाद के दृष्टिकोण से मिश्रित होती है शुद्ध भक्त नहीं होता। यद्यपि मैत्रेय भी भक्त थे किंतु उनकी भक्ति मिश्रित थी। भगवान दिव्य प्रेम के आधार पर अपने भक्तों से प्रतिदान करते हैं ज्ञान या सकाम कर्मों के आधार पर नहीं। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के में एकत्ववाद ज्ञान अथवा सकाम कर्मों के लिए कोई स्थान नहीं है। वृंदावन की गोपियां ना तो परम विद्वान थी ना योगी थी, उनमें भगवान के लिए अनुराग प्रेम था। रागानुग प्रेम था, अतः वे उनके प्राण आधार बन गए और गोपियां भी उनकी प्राण आधार हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के साथ गोपियों के संबंध को सर्वोत्कृष्ट माना है। रम्या काचिदुपा सना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर उद्धव के प्रति भगवान का दृष्टिकोण मैत्रेय मुनि की उपेक्षा अधिक घनिष्ठ था। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रेम करते थे। तो यहाँ दो चीज़ बताई जा रही है, एक तो भक्त दूसरा ज्ञानी। ज्ञानी चाहे कितना ही उत्कृष्ट हो ज्ञान में कितना ही उन्नत हो उसके अंदर एक भाव होता है भगवान के साथ एकात्म का कि मुझे भगवान के साथ मिलकर एक होना है। परंतु भक्त की क्या इच्छा होती है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है और भगवान की सेवा करनी है। पहले तो उद्धव जी भी ज्ञानी थे, वो भी बृहस्पति जी के शिष्य थे और ज्ञान मार्ग पे थे, परंतु जब से उन्होंने वृंदावन की गोपियों का दर्शन किया उनके साथ मिले तो उनका सारा ज्ञान चकनाचूर हो गया और वो भी भगवान के प्रेमी भक्त बन गए। तो यहाँ पर उद्धव जी और मैत्रेय जी भगवान के अंतिम समय में दोनों भगवान के साथ हैं, परंतु भगवान जो है वो उद्धव से बात करते हैं क्योंकि उद्धव की ओर उनका ज़्यादा आकर्षण है। तो इसीलिए उद्धव जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान ने समीक्षयावेश रमयन्नुवाच मुझे उन्होंने बहुत ही विशेष दृष्टि से समीक्षया मुस्कुराते हुए विशेष चितवन से मुझसे इस प्रकार बोले। तो भगवान उद्धव जी से क्या बोलते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।